Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Adi Guru Bhagavan Shankaracharya Virachit. दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है तो द्वितीय श्लोक की व्याख्या चल रही है।
बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा वैस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् ते तत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषम्बादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करुणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागप्स्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये।
तो ये समग्र विश्व जड़ और चैतन्य उभय रूप स्थूल और सूक्ष्म और कार्य और कारण रूप व्यक्त अव्यक्त रूप ये जो विश्व प्रपंच है इसका कारण क्या है। अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग ढंग से बताया कि यह इस तरह उत्पन्न हुआ है। कोई परमाणु कारण मानते हैं तो किसी ने प्रकृति को कारण माना, लेकिन वेदांत दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी जिसको प्रमाण के रूप में मानते हैं ये सारा का सारा विश्व एक सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय रहित शुद्ध तो ब्रह्म चैतन्य है जिसका नाम ईश्वर है उसके द्वारा यह उत्पन्न हुआ है। सदैव सौमिदम अग्र आसीत, ये छांदोग्य उसकी श्रुति है। उद्दालक आरुणि अपने पुत्र सहित केतु को कहते हैं कि इदम, ये सारा नाम रूपात्मक जगत इस रूप में प्रकट होने से पहले सद एव आसीत, सद रूप में ही था, उसी को आधार मानते हुए यहां शंकराचार्य जी ने कहा बीजस्यांतरिवांकुरो, जैसे बीज के अंदर तमाम वृक्ष पूर्व ही सन्निहित रहता है परंतु अव्यक्त रूप में रहता है, बीज से अभिन्न होकर रहता है, एकात्म रूप में रहता है, उसी बीजस्थानीय परमात्मा से जैसे वृक्ष उत्पन्न होता वैसे सारा जगत उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ तो बोले माया कल्पित देश काल कलना, ये जगत में यही है, देश काल नाम और रूप कलना, यही रचना है माया का, माया इन सब की रचना करती है, उस परमात्मा के सान्निध्य प्राप्त करके आश्रय प्राप्त करके इस सब चीज की रचना माया खुद करती है। वैचित्र चित्रीकृतम, उसी से विचित्र विचित्रता विरोधाभासी वस्तु को उत्पन्न कर देती है, उसी माया से सबको जलाने वाले अग्नि पैदा करती है माया, और उसी माया से पानी पैदा होता है, जैसे कि सामान्य व्यवहार में पानी और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये विरोधाभासी उत्पन्न करने की क्षमता उस माया में है। अब ये माया भी वह यहां उस माया का आश्रय चैतन्य को ही जगत कारण के रूप में लिया गया है, तो यहां दोनों को अभिन्न रूप में माना गया, ईश्वर और माया, क्योंकि ईश्वर के बिना माया का अस्तित्व नहीं, माया के बिना ईश्वर कारण रूप में प्रवृत्त नहीं हो सकता, तो माया और चैतन्य ईश्वर दोनों को एक मानकर कभी माया कह देते हैं कभी ईश्वर कह देते हैं। ईश्वर से अलग होने पर माया नहीं रहती है, माया से अलग होने पर ईश्वर नहीं रहता, ये भी ख्याल रख लेना, ब्रह्म होगा ब्रह्म रहेगा ईश्वर नहीं रहेगा। माया भी विजृंभयती, शंकराचार्य जी समझाते हैं कि ये जगत उस ईश्वर के द्वारा कैसे उत्पन्न हुआ, तो मायावी के तरह जादूगर के तरह, यत बृहद इंद्रजाल को चलाने वाला इंद्रजालिक, या माया के खेल को दिखाने वाले जादू के खेल को दिखाने वाला जादूगर, जादू के प्रभाव से वह बिना साधन सामग्री उपकरणों के वह कार्यों को उत्पन्न करके दिखा देता है। हमने कल उदाहरण दिया था, सड़क के किनारे खड़ा होता है जादूगर और हाथ ताली पीटता है और मिट्टी उठाता है, नोट निकाल के दिखा देता है। वहां कुछ नहीं है, साधन कुछ नहीं है, फिर भी वह नोट दिखा देता है, और बढ़िया नोट दिखा रहा था उतनी में फिर वह आग लगा देता है, वो नोट जल के राख हो जाता है, फिर उस राख से फिर वह माला निकाल देता है, उसी राख से रुमाल बना देता है, और जो जो संकल्प करता है दिखाना चाहता है वो दिखाता जाता है। अब साधारण ग्रामीण जनता और हम बच्चे जैसे इतने मोहित हो जाते हैं उसको खेलकर देखकर कि मन में लगता है ये कला हमको भी आ जाती तो हम भी खूब कमाई करते, और आश्चर्य लगता कि ये कैसे हुआ, साफ दिखता है। एक सर्कस में हम देखने गए थे बचपन में, बनारस में जब पढ़ रहे थे तो सर्कस आया था, तो उसने दर्शकों में से एक व्यक्ति को बुलाया, तुम आ जाओ। तो गया बेचारा, बुलाया तो गया, उसकी पत्नी भी वहीं बैठी थी, गया और उसको टेबल में लिटा दिया, और लिटाने के बाद ऊपर से एक चादर उड़ा दी और बिजली का आरी चलाकर उसने उसको दो टुकड़े कर दिया, टेबल को भी काटकर उसके सोया है उसके शरीर को ही दो टुकड़ा, टेबल को भी दो टुकड़ा करके एक टुकड़ा इधर फेंक दिया एक टुकड़ा इधर फेंक दिया। सब आश्चर्य मनाने लग गए, सब लोगों ने देखा है वो टेबल में सोया है और उसके ऊपर उसने पूरा चादर डाल दिया और काट के दो टुकड़ा कर दिया। वो तो उसकी पत्नी तो वहीं से जोर जोर से रोते हुए कूद पड़ी। तो क्या हुआ, बोले मेरे पति को काट के दो टुकड़ा कर दिया। वो तो रोने लग गई, पुलिस आ गई, उसको संभाला गया। थोड़ी देर के बाद उसने दोनों टेबल को जोड़ दिया, फिर चादर हटाया, वो उठो उठो, वो तो उठ गया। ये सब जादू का खेल है। अब वहां ना आ रही है ना कोई कटा हुआ है ना कुछ है, लेकिन दृष्टि का ऐसा भ्रम बन जाता है। पारमार्थिक यानी व्यावहारिक के रूप में वो सब कुछ भी नहीं होता है। जादूगर जो कुछ भी खेल खेलता है, जो कुछ भी दिखाता है, वह प्रातिभासिक के रूप में होता है, व्यावहारिक के रूप में केवल मनोरंजन के लिए होगा, उसमें और कोई व्यावहारिक सत्ता नहीं होती है। लेकिन यह सारा का सारा जगत तो व्यावहारिक अस्तित्व वाला है, वहां तो कट के दो टुकड़ा हो गया तुरंत वो खड़ा हो गया, अब यहां तो मरता है दोबारा आता नहीं है, मरने के बाद तुरंत खड़ा हो जाता, एक डेढ़ घंटा मरता फिर उसके बाद तुरंत खड़ा हो जाता, तो ये मृत्यु इतनी दुखदायी नहीं होती होती। जैसे वहां आरी चला दिया दो टुकड़े हो गए, एक सेकंड के लिए उसकी पत्नी को दुख का कारण बन गया, लेकिन वो तुरंत खड़ा हो गया, तो मृत्यु दुखदायी नहीं हुई। आप नित्य प्रलय में जाते हो गहरी सुसुप्ति में, कुछ भी भान नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद निद्रा खुलती है, जैसा का वैसा आप देखते हो, तो सुसुप्ति अवस्था का विनाश आपको दुखदायी नहीं होता, जबकि सुसुप्ति अवस्था में कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। पति को पत्नी प्रतीत नहीं हो रही है, पत्नी को पति प्रतीत नहीं हो रहा है, मां को बेटा प्रतीत नहीं हो रहा है, बेटे को मां प्रतीत नहीं है। इन सब के बावजूद भी, क्योंकि वह पुनः थोड़ी देर के बाद प्रतीत होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वह कुछ भी नहीं हुआ है और वह दुखदायी का कारण नहीं बनता है, सहज बन जाता है। और ये जागृत अवस्था, ये प्रपंच भी व्यावहारिक सत्ता वाला प्रपंच भी उसी तरह यदि प्रातिभासिक मात्र होता तो इतना दुखदायी भी न होता। ये तो मरता है फिर वापस नहीं आता है, तब दुख का कारण बन जाता है। कैसे ये व्यावहारिक हुआ, ये माया कल्पित है, तो इंद्रजाल की तरह जादूगर की तरह वह वस्तु केवल प्रातिभासिक होनी चाहिए, व्यावहारिक कैसे हो गया। तुरंत दूसरा दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने, माया बीव विजृंभत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये महायोगी व यह स्वेच्छया कोई समर्थ योगी अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति के और क्रिया शक्ति के माध्यम से बिना सहकारी कारण बिना उपादान कारण वह अनेक वस्तुओं को उत्पन्न कर देता है। जैसे एक महायोगी बिना उपादान कारण बिना सहकारी कारण केवल इच्छा मात्र से संकल्प मात्र से अनेक वस्तुओं को उत्पन्न कर देता है, इसी तरह वह परमात्मा भी बिना उपादान कारण और सहकारी कारण के अपने अकेले ही संकल्प शक्ति इच्छा मात्र से वह ये विश्व प्रपंच को उत्पन्न करता है। इसके लिए उसको उपादान कारण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, सहकारी कारण को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात, प्रश्न ये था कि तब तो ये प्रातिभाषिक होना चाहिए, व्यवहारिक क्यों हुआ? तो हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रमाण हैं, योगी सिद्ध महापुरुष संकल्प मात्र से जो वस्तु उत्पन्न करते हैं उन योगी सृष्ट पदार्थ पूरी तरह लोक व्यवहारिक होता है और वह प्रातिभाषिक मात्र नहीं रहता, पूरे व्यवहारिक होता है और व्यवहार हो जाता है। पुराणों में उदाहरण दिए, बहुत से पुराण उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप लोगों ने भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण कई बार सुनी है। कर्दम ऋषि थे, कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे नारायण सरोवर के किनारे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। बिंदु सरोवर बोलो, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर के किनारे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और उधर मनु महाराज की पुत्री थी देवोती, तो उनको विवाह करने का कन्या जब विवाह करने की अवस्था को प्राप्त हुई तो मनु महाराज को चिंता हुई कि किससे विवाह करें, इनके योग्य वर कौन होगा इस समय। तो नारद जी ने जाकर संकेत कर दिया कि कर्दम ऋषि, आपकी पुत्री जैसे ही सर्वगुण संपन्न कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए वह भी तपस्या में लगे हुए हैं। सबसे अच्छा आपकी पुत्री की योग्य तो कर्दम ऋषि हैं, ले जाकर कर्दम ऋषि के साथ विवाह करा दीजिए। अब ये केवल कर्दम की इच्छा नहीं है, ये सभी देवताओं की भी इच्छा है, हम लोगों की भी इच्छा है कि कर्दम ऋषि विवाह कर ले वे। और क्योंकि कर्दम ऋषि के ही माध्यम से भगवान को अवतरित होना है, कपिल भगवान को कपिल अवतार होना है, तो मन महाराज जी चले गए कन्या को लेकर, विभूति को लेकर। विवाह का प्रस्ताव रखा, कर्दम ऋषि तो चाहते ही थे, शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, पुराण में। जब कर्दम ऋषि ने बहुत कठोर तपस्या की और भगवान नारायण प्रकट हुए और पूछा कि बेटा किस लिए तुमने तपस्या की है, तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो हमसे, क्या चाहते हो? तो शास्त्र में लिखा है, कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे मनानुकूल इच्छा के अनुसार चलने वाली और परमार्थ में साथ देने वाले, भोग में भी अनुकूल और मोक्ष में भी वह अनुकूल हो, साथ चले। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। ये पत्नी कोई साधारण नहीं है, भव सागर से तारने में वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारी भारतीय संस्कृति ये प्रतीक है। क्योंकि गीता का भी ये कहना है कि परस्परम भावयंत श्रेय परमावश्यकता। अकेले ना ये लौकिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है ना पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य एक दूसरे की अपेक्षा रखता है और एक दूसरे के सहयोग से, मदद से, परस्पर भावना से वह यलोक और परलोक दोनों बना सकता है। ये वैदिक संस्कृति है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि इस लोक में भी मुझे व्यवहारिक सत्ता में पूरा साथ देने वाली चाहिए, और केवल व्यवहारिक सत्ता को साथ देने वाली न होकर परमार्थ को भी सुधारने वाली मुझे पत्नी चाहिए। तो ये बात जब भगवान नारायण ने सुनी तो शास्त्र में लिखा है कि भगवान नारायण के आंख से आंसू आ गए कि कैसा मेरा भक्त इतना तपस्या, इतना कठोर तपस्या कर रहा है और मैं साक्षात नारायण इसके आगे खड़ा हूं, और ये जन्म रोकने के लिए यह पूरा साक्षात मोक्ष, सालोक्य, सारूप्य, साष्ट्य, सामीप्य आदि किसी प्रकार का भी मोक्ष देने में मैं समर्थ हूं, साक्षात मुक्ति देने में समर्थ हूं, और ऐसे परमात्मा मैं इसके सामने खड़ा होता हुआ भी यह संसार का भोग मांगता है, कैसी विडंबना है। भगवान का भक्त भगवान से यदि सांसारिक भोग मांगता है तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, भगवान देना नहीं चाहते। लेकिन वो बार बार रोता है, बार बार आग्रह करता है, तो दे तो देते हैं लेकिन रोते हुए देते, प्रसन्न होकर नहीं देते। ये हमारे पूरा भारतीय शास्त्र भरा पड़ा है, इससे दुखी होकर देते। और परमात्मा जिस वस्तु को दुखी होकर दे तो उससे तुम कैसे सुखी होगे? जिस वस्तु को देते समय स्वयं परमात्मा को दुख हो, उस वस्तु से तुम कैसे सुखी होगे? लेकिन संसार तो ये मानता है कि परमात्मा दुखी हो में तो हो में, हमको वस्तु मिलना चाहिए, हमको सुख होना चाहिए। लेकिन संसार के वस्तु, हर वस्तु चाहे कोई भी हो, परिणामे दुखमेव। गीता का यह श्लोक ध्यान रख लेना, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम तामसम स्मृतम। ऐसे सुख को तो तामसिक और राजसिक सुख कहा, सात्विक रूप सुख तो वही नहीं सकता है। तो भगवान नारायण को बड़ा दुख हुआ, फिर भी उन्होंने मांगा है कर्दम ने तो तथास्तु दे दिया। उसी वरदान के प्रेरणा से मनु महाराज देवहूति को लेकर कर्दम के पास चले गए, शादी हो गई। लेकिन कर्दम ऋषि ने शर्त रख दिया है कि हम तुम्हारी कन्या से शादी तो कर लेंगे, लेकिन एक बेटा हो जाने के बाद फिर हम सन्यास हो जाएंगे, ख्याल रख लेना। बच्चा हुआ, बेटा हुआ कि हम सन्यासी हो जाएंगे, घर छोड़ देंगे, तुम्हारी बेटी को भी छोड़ देंगे, बच्चों को भी छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे सन्यासी होने के लिए। शर्त मंजूर, मंजूर, शादी हो गई। उसके बाद तो फिर कर्दम ऋषि तपस्या में लग गए तुरंत। भागवत का प्रसंग है, थोड़ा आज बता देते हैं। अब देवहूति पूरी की सेवा में, निष्ठा से सेवा में लगी हुई है, वर्षों हो गया है। पर्णकुटी में बैठे हुए हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, पर्णकुटी में है, कोई साधन सामग्री नहीं है, अब सेवा किए जा रही है। कभी ये नहीं पूछ रही है कि तुम कब तक समाधि लगाओगे, हमारा क्या होगा, समाधि लगाना था तो हमसे शादी क्यों की। बहुत से लोग कहते हैं तुमको सन्यासियों के पीछे, सत्संग के पीछे चलना था तो फिर हमसे शादी क्यों की। बहुत सी माताएं कहती है न, पति यदि सत्संग के लिए चला जावे कभी और पत्नी जाना न चाहे, ये तो आप भाग्यशाली हैं कि साथ साथ भी आ जाते हो और या रोकती नहीं है, नहीं तो ये समस्या बहुत में है। पति भी यही आरोप लगाता है, सत्संग में जाने की इच्छा नहीं है और पत्नी जाती है, तुझे जब सन्यासी की तरफ सत्संग में जाना था तो पहले ही शादी क्यों किया, तो जोगी बनना थी कि पहले हमसे शादी क्यों किया। पत्नी भी यही कहती है, तुझे जब वेदांत में लगना है था, सन्यासी के पीछे जाना था, तो हमसे शादी क्यों की। देवभूति ने कहा तो कर्दम ऋषि समाधि से जग गए, बोले अच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो। तो बोले अब क्या इच्छा है, हर स्त्री शादी के बाद मां बनना चाहती है, और क्या इच्छा है, क्योंकि उसके जीवन की पवित्रता और पूज्यता तभी संपन्न हो सकता है जब वो मां बन जाती है, उससे पहले वो मां नहीं बन सकती है, मातृत्वमय पूज्य गरिमामय सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो हमारी इच्छा यही है। बोले तुम्हारी इच्छा है तो पूरा हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो, करती हो। कर्दम ऋषि ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारी इच्छा है तो भी पूरी हो जाएगी। तो देवहूति ने कहा कि इस अवस्था में रहने के लिए घर यह है, आजकल तो शादी से पहले कंडीशन रखते हैं कि फ्लैट अलग लोगे कि नहीं, बॉम्बे में अलग फ्लैट खरीदोगे तो हम शादी करेंगे तुमसे, और यदि अलग फ्लैट नहीं है तो मां बाप के पास तो हम रहने वाले नहीं है लेव जी, तो पहले कंडीशन रखते हैं, पहले अलग फ्लैट चाहिए, बढ़िया घर चाहिए।